Once again, I welcome to our all learners to Senior Secondary Mathematics Program. Basically, discuss about sets, जिसको बोलते हैं sets में हमारा day to day life में हम लोग बहुत acquainted है concept के साथ, लेकिन जब mathematics का बात आता है, mathematics का जो senior secondary level है, ये शुरुआत है sets का concept, वो आपको जो आपका पहला chapter है, पहला module का पहला chapter है इस sets है. तो बात है कि सेट्स जहाँ हम एक जनरल कॉन्सेप्ट है, जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर बात करूँगा मैं आपका सोफ़ा सेट, घर पे आपका घर पे होगा सोफ़ा सेट होगा, टी सेट होगा, डिनर सेट है. आप देखोगे जब बात कर रहे थे कि सोफ़ा सेट, इसी टाइम पे आपको दो तीन ऑब्जेक्ट का ऊपर नज़र आएगा, जैसे थ्री सीटेड एक सोफा है, टू सीटेड सोफा है और एक टी पॉय होता है. तीनों अगर मिलेंगे देन वी कैन से इट बिकम ए सेट. सिंगल ऑब्जेक्ट को इन जनरली हम सेट माध्यम से हम सोचते नहीं है, मैथमेटिक्स पॉइंट में सोच सकते हैं, लेकिन इन जनरली ये होता है कि कलेक्शन, कुछ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मिलेगा और एक कॉमन चीज को रिप्रेजेंटेशन कर रहा, देन आफ्टर वी कैन से इट इज ए सेट. जैसे हम बात करेंगे अगर सोफा सेट का बीच पे एक प्लास्टिक चेयर हम रख लेंगे तो इट डज नॉट बिकम ए सोफा सेट. सोफा सेट का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं करेगा. सिमिलरली टी सेट, टी सेट जो होता है आपको कप होगा, प्लेट होगा और एक ट्रे होता है, देन इट बिकम ए टी सेट. अगर उसका बीच में एक कटोरी में डाल दूंगा इट इज नॉट ए टी सेट. टी सेट नहीं बोल पाऊंगा मैं. सो जहाँ पर बात है कि सेट, सेट पे एक तो है थिंग शुड बी डिफाइंड. अगर डिफाइंड फॉर्म पे नहीं है देन इट इज इट वी कैन नॉट से इट बिकम ए सेट. और जैसे बात करूँगा कि एक चीज़ मैं बोलूँगा कि आपको लाइब्रेरी में जाओ और लाइब्रेरी पे आप इंटरेस्टिंग किताब का एक कलेक्शन करो, दैट इज़ कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग बुक इन योर लाइब्रेरी. ये अगर मैं ये टास्क आपको दूंगा कि इंटरेस्टिंग बुक आपका लाइब्रेरी में ढूंढो और उनका एक सेट बनाओ, सो इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट. मुझे पता है कि इंटरेस्टिंग बुक, तो मेरे हिसाब से इंटरेस्टिंग जो कॉन्सेप्ट है, ये जो डेफिनेशन है, ये बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत सब्जेक्टिव है, क्योंकि इंटरेस्टिंग जो किताब मुझे इंटरेस्टिंग हो सकता है और किसी को इंटरेस्ट नहीं हो सकता है. सो जो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी सब्जेक्टिव, हम डिफाइंड फॉर्म पे नहीं है. और सेम बात को मैं बोलूँगा आपको, आप अपना लाइब्रेरी को जाओ और 10 मैथमेटिक्स किताब को ढूंढो तो वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 10 मैथमेटिक्स मैथमेटिकल रिलेटेड कोई भी किताब आप ढूंढ सकते हैं. लेकिन जहाँ कर बात है कि इंटरेस्टिंग बुक है, आप ढूंढना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि सोसाइटी किसको ऊपर क्या डिपेंड करता है कि मुझे क्या इंटरेस्टिंग है, दूसरे लोग को क्या इंटरेस्टिंग है, इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट. अगर अनटिल अनलेस चीज डिफाइंड नहीं है, डिफाइंड इन सेंस मैथमेटिकली हम बोलते हैं उनको वेल डिफाइंड आइडिया नहीं है, सो वी कैन नॉट फॉर्म ए सेट. सेट का जहाँ पर बात है वहाँ पे एक पहला सेट का जो डेफिनेशन आएगा, द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. एक तो है ऑब्जेक्ट है, सेकेंड है कलेक्शन है, थर्ड है वेल डिफाइंड. वेल डिफाइंड फॉर्म पे नहीं है देन इट डज नॉट मीनिंगलेस, मीनिंग बात आपका मीनिंग होगा और सेट एक फॉर्मेशन नहीं होगा. जैसे मैं अगर आपको बताऊंगा, आप क्रिकेट मैच देख रहे और आप कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया, मैं अभी पूछूंगा कि आप इंडिया का जो गुड क्रिकेट प्लेयर है उनका 5 गुड क्रिकेट प्लेयर का सेट बनाओ, सो आप बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा. इसलिए मुश्किल हो जाएगा कि मैं बैट्समैन को लूँ, ना बॉलर को लूँ, ना विकेट कीपर लूँ, ना गुड फील्डर को लूँ, ये बात आपको पूछा नहीं है, डिफाइंड फॉर्म पे नहीं है. सो द वर्ड गुड इट्सेल्फ है सब्जेक्टिव, इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड. सो यहाँ पे हमको सेट बना नहीं पाएंगे. सो सेम चीज़ को अगर मैं बताऊँगा कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर, कलेक्शन ऑफ अ गुड क्रिकेट प्लेयर दोज हो हैव प्लेड 50 टेस्ट मैच क्रिकेट फॉर इंडिया. अगर मैं पूछूंगा कि आप 50 क्रिकेट मैच खेल चुका वाला जो प्लेयर है, ऑलरेडी खेल चुके हैं, उनका लिस्ट बनाओ, आप बना सकते हैं. इसलिए बना सकते हैं, यहाँ एक डिफाइंड है, 50 टेस्ट मैच जो खेला है ऑटोमेटिकल ही इज बिकम ए गुड क्रिकेट प्लेयर ही और शी. व्हाई? बिकॉज जो टेस्ट मैच खेलते हैं ये मानना है दे हैव ए गुड एवरेज परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, इसलिए उनका अच्छा प्लेयर मानते हैं. और 50 मैच जो खेल दिया ऑटोमेटिकली वो अच्छा प्लेयर होते हैं. सो द टर्म शुड बी वेल डिफाइंड. मेरे ये इतना कहना है कि कोई भी चीज़ को आप सेट बना ले पाओगे. और आप जैसे मैं बताए थे सोफा सेट, आप कोई भी चीज़ नहीं है कि जिसके ऊपर हम बैठेंगे उनको लेके हम एक सोफा सेट बना देंगे, ऐसे कंसेप्ट बिल्कुल नहीं है. सोसाइटी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा और मैथमेटिकल दुनिया पे तो वो तो बिल्कुल भी नहीं है. मैं अगर ये चीज़ बात करूँगा, आपका क्लास में टॉल स्टूडेंट सबसे जिसका हाइट अच्छा है टॉल स्टूडेंट का एक लिस्ट बनाओ, अभी बना नहीं पाओगे. सेम चीज़ को मैं बोलूँगा कि आपका क्लास में जिसका हाइट पाँच फीट से ज़्यादा स्टूडेंट है उनका लिस्ट बनाओ, आप बना सकते हैं. क्योंकि यहाँ पे डिफाइंड हो गया 5 फीट 5 फीट वाला स्टूडेंट को टर्म आपको एक डिरेक्शन दे रहा है. सो ये जो कैस है कि गुड है, इंटरेस्टिंग है, टॉल है, ऑल दीज थिंग्स आर द आइडिया इज सब्जेक्टिव. सो अनटिल अनलेस आपको डिफाइंड फॉर्म पे नहीं है सो आप बना नहीं पाओगे, एक सेट बना नहीं पाओगे. सो अगर हम बात करेंगे सेट का डेफिनेशन क्या है, सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. ये डेफिनेशन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड. वेल डिफाइंड नहीं है तो सेट नहीं होगा. कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता है, उसका हम बात करेंगे. तरीका टाइप्स ऑफ सेट्स क्या है हम बात करेंगे, लेकिन उसका पहले मैं बताना चाहता हूँ जो सेट है, सेट को लेके हम मैथमेटिकल जो रिलेशन है, फंक्शन है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, कि जितने टू डायमेंशनल ज्योमेट्री, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, मैथमेटिकल जो भी जितने कॉन्सेप्ट है सेट से शुरुआत है. उनका बिना सेट लिंक बहुत गंभीर है और उनका बारे में हम लोग बहुत क्लियरली कॉन्सेप्चुअल क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. इसलिए मैं इतने बताऊंगा कि आप सेट जो पहला चैप्टर है इस पर कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए. अगर ये डाउट आपको आगे वाले मैथमेटिकल कोई भी कॉन्सेप्ट में डाउट को और बहुत डाउट पहुंचा देगा. सो जो सेट को दुनिया को आने के लिए जो डिस्कवर किए थे, द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सेट फर्स्ट टाइम डिस्कवर बाय जर्ज कैंटर, वो एक जर्मन मैथमेटिशियन है, जर्ज कैंटर फ्रॉम 1845 टू 1918. ये जो ये कॉन्सेप्ट सेट जो है ये लेके आए थे दुनिया को. उसको बाद उनका ऊपर काफ़ी रिसर्च हुआ और उनको रिसर्च होने के बाद बहुत कॉन्सेप्ट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को तो सोल्यूशन दिया, बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी आसान हो गया. सो उनको हम बोलते कि फादर ऑफ सेट, जर्ज कैंटर एक जर्मन मैथमेटिशियन है. नाउ दो बात है कि जैसे मैं बात किए थे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है जो सेट बनता है. सेट को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, सेट को रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका दो तरीका होता है. तो फर्स्ट जो तरीका होता है उनको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इन ए रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म पे जो सेट को रिप्रेजेंट करेंगे उनके लिए दो चीज़ हमको ध्यान रखना पड़ेगा. एक तो है सेट जिसका नाम है, जैसे सपोज मैं ए सेट बनूंगा, ए शुड बी इन कैपिटल लेटर. ये है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डिरेक्शन स्टेटमेंट व्हाट एवर इट में भी. आप कुछ छोटा एल नहीं लिख पाओगे, स्मॉल लेटर पे लिखोगे नहीं, कैपिटल लेटर सेट का नाम रिप्रेजेंट करेगा. सेकेंडली जो एलिमेंट रहेगा वो स्मॉल होगा और सारे एलिमेंट को हमें एक करली ब्रैकेट, आपको पता है करली ब्रैकेट्स में उनको एनक्लोज करना पड़ेगा. सो तीन कॉन्सेप्ट है, सेट का नाम जो है वो कैपिटल लेटर पे रहेगा, एलिमेंट स्मॉल लेटर पे रहेगा, सारे एलिमेंट को सेपरेट जो करेंगे विद इन कॉमा में. सपोज एलिमेंट इज सेट इज ए, एलिमेंट्स इज 1 2 3, सो 1 2 3 नहीं लिखेंगे, 123 मीनिंग हो जाएगा. सो 1, 2, 3 देन आफ्टर हम एक ब्रैकेट विद इन ब्रैकेट में रखना पड़ेगा. अगर ब्रैकेट नहीं दिए तो ये सेट भी नहीं होगा. सो दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट. सो अगेन आई जस्ट लाइक टू रिपीट, सेट को एक ब्रैकेट मतलब एनक्लोज कर्ली ब्रैकेट में करना पड़ेगा, एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर पे लिखना पड़ेगा और जो सेपरेट है, दोनों एलिमेंट का बीच में जो सेपरेट है विद इन कॉमा पे रखना पड़ेगा। ये दो तीन प्रिंसिपल है और इट इज कॉल्ड द रोस्टर फॉर्म। जैसे मैं बात करूंगा सेट ऑफ लेटर्स यूज इन वर्ड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में अगर बात करेंगे मैथमेटिक्स का जो स्पेलिंग है MATHEMATICS, इसमें कुछ लेटर रिपीटेशन है, जैसे MATHEMA मतलब एम भी रिपीटेशन है, ए भी रिपीटेशन है और कुछ रिपीटेशन नहीं है, टी रिपीटेशन है, MAT ये तीनों चीज रिपीटेशन है। रिपीटेशन को रिपीट नहीं करेंगे, मतलब अगर दो दो बार आया एक बार हमको लिखना पड़ेगा, रिपीटेशन शुड नॉट बी देयर। सो अगर उनका सेट है एस है द एलिमेंट्स विल बी MATHEICS, ये मतलब होता है अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है हम ब्रैकेट में ओनली वन बार लिखेंगे, पांच बार नहीं लिखेंगे। पांच बार अगर रिपीट हो रहा है, दो बार रिपीट हो रहा है फिर भी एक बार लिखना पड़ेगा, रिपीटेशन शुड नॉट बी देयर विद इन द ब्रैकेट। दिस इज कॉल्ड द सेट रिप्रेजेंट इन द रोस्टर फॉर्म। अगर अनदर फॉर्म है जहाँ पर आपको बहुत दिक्कत होगा आपको सेट रोस्टर फॉर्म पे उनको रिप्रेजेंटेशन करने में, अगर मैं बात करूँगा कि सेट ऑफ ऑल मेल पर्सन इन इंडिया, इंडिया पे आपको पता है 130 करोड़, दैट मीन्स अराउंड 13 मिलियन जो पॉपुलेशन है, और इस पे लगभग अगर 50% में लो तो अराउंड 75% नहीं लो 50% एग्जैक्टली 50% ऑफ लो मेल फीमेल का आपको मिल जाएगा 65 करोड़। तो 65 करोड़ लोग को हम लिख नहीं पाएंगे, सो इट इज ऑलवेज वी हैव टू रिप्रेजेंट इन ए डिफरेंट फॉर्म। दैट डिफरेंट फॉर्म इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का जो तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। सेट रोस्टर फॉर्म पे क्या होता है, अगर एलिमेंट कम है हम रोस्टर फॉर्म पे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर एलिमेंट ज़्यादा है तो उसी टाइम पे हम उनको सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म पे हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे सेट को, जैसे ए इक्वल टू सपोज जैसे मैं बात किए थे सेट ऑफ ऑल इंडियन सिटीजन, सेट ऑफ ऑल मेल इंडियन सिटीजन, यहाँ होगा ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंडियन मेल सिटीजन। सो इसी एस्पेक्ट में हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे। जैसे मैं बात करूँगा कि फ्रॉम 1 to 100 बीच में जितना इवन नंबर है, 1 to 100 बीच में इवन नंबर का एक सेट बनाओ। सो हमको अगर रोस्टर फॉर्म पे हम रिप्रेजेंट करेंगे हमको लिखना पड़ेगा 2 से शुरू होगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ऐसे इतने नंबर आएगा आपको बोरिंग लगेगा और कॉपी में आपको लिख भी नहीं पाओगे, इतना पॉसिबल भी नहीं है। सो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम सेट बिल्डर का हेल्प लेंगे। सेट बिल्डर में ये क्या होगा, कॉमन चीज को एक कॉमन एस्पेक्ट में रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n मतलब क्या होता है, 2 से डिविजिबल मतलब ये होता है दैट नंबर इज इवन नंबर एंड n लेस देन 100। ये एक कॉमन प्रिंसिपल, कॉमन प्रॉपर्टी हम लिख दिए। सो इट इज़ द क्वाइट यू कैन से वेरी इजीली वी कैन राइट वन एस्पेक्ट। अनदर एस्पेक्ट होता है हमारा टाइम भी बच जाएगा, हम बोरिंग नहीं होंगे, बोरिंग नहीं होना पड़ेगा आपको, टाइम भी सेफ हो जाएगा और जो चीज़ हम सेट बिल्डर में करना चाहते हैं वो सेम चीज़ को हम सेट बिल्डर फॉर्म पे हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। सो ये एक आसान तरीका होता है सेट बिल्डर फॉर्म पे सेट का जो एलिमेंट है उनको रिप्रेजेंटेशन करने में। डियर लर्नर्स, बेसिकली वी हैव डिस्कस टू थिंग्स, वन इज सेट। सेट क्या होता है, सेट का ये होता है सेट इज द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है। सेकेंडली हम बात किए थे सेट को हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। सेट का रिप्रेजेंटेशन करने का दो तरीका होता है, वन इज रोस्टर फॉर्म, अनदर इज द सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म पे ये होता है सारे एलिमेंट को हम विद इन कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, एलिमेंट को स्मॉल लेटर, सेट का नाम कैपिटल लेटर पे रहेगा और एलिमेंट आर सेपरेटेड थ्रू द कमास। एंड सेट बिल्डर फॉर्म पे ये होता है कि अगर एलिमेंट हमारे पास ज़्यादा है, सेट बिल्डर फॉर्म इज द आइडियल फॉर्म टू रिप्रेजेंट अ सेट, और वहाँ का जो होता है एक्स इक्वल टू एक्स हज दैट, देन हम उनका जो कॉमननेस को रिप्रेजेंटेशन करते हैं. राइट नाउ वी विल बी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ सेट. क्या क्या डिफरेंट सेट होता है? एक तो तरीका होता है फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट है अगर हम एलिमेंट को काउंट कर पाएंगे, गणना कर पाएंगे, देन वी कैन से दिस इज द फाइनाइट सेट. अगर मैं बोल, जैसे मैं बात कर रहे थे सेट ऑफ ऑल इंडियन सिटीजन, हम अप्रोक्सीमेटली वैल्यू हम पता है कि 130 करोड़. रियली वी इस मिनट में कोई बर्न हो जाता है, किसी का भी डेथ हो जाता है, सो ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है. सो इसी जगह पे आपको काउंट नहीं कर पाओगे, यू नो. सो वी कैन से द इन्फाइनाइट सेट स्टैंड फॉर इफ द एलिमेंट इज डिफिकल्ट टू काउंट एंड हैव द इन्फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद इन द सेट, देन वी कैन से दिस सेट आर इन्फाइनाइट. फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का जो सेट है, कितने नेचुरल नंबर नंबर सिस्टम है किसी को भी कुछ पता नहीं, क्योंकि हम काउंट नहीं कर पाएंगे. नंबर इतने सारे नंबर है, हम काउंट नहीं कर पाएंगे. तो दिस सेट आर द इन्फाइनाइट सेट. अगर मैं बात करूँगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिलो 50, हम काउंट कर पाएंगे. यस, 1 to 49 आर द नेचुरल नंबर्स. सो दीज आर द फाइनाइट सेट. जो अगर सेट का एलिमेंट को हम काउंट कर पाएंगे देन इट इज कॉल फाइनाइट. अगर काउंट नहीं कर पाएंगे दिस सेट इज कॉल इनफाइनाइट सेट. अनदर कैटेगरी ऑफ सेट इज कॉल एम्प्टी सेट. एम्प्टी मतलब एम्प्टी सेट समटाइम्स वी कैन से इज द नल सेट, sometimes we call as a void set, void void set. That means empty set मतलब कोई meaning नहीं है, उसका अंदर पर कोई element भी नहीं है. जैसे मैं बात कर रहा हूँ x such that x is a natural number less than 0, 0 का less कोई भी natural number exist नहीं है. जो भी number है these are called the integer. So these set are called the empty set. अगर मैं बात करूँगा x such that x element of real number आर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन. अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन है, एक्स इक्वल टू माइनस वन रूट ओवर व्हिच इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज इन दैट मीन्स हेयर द रियल नंबर इज नॉट एग्जिस्ट. एम्प्टी सेट का यही मतलब होता है कि हम उनको डिफाइन नहीं कर पाएंगे. सेकेंडली कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा. सो दिस केस दिस काइंड ऑफ सेट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट. नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ सेट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट. सिंगलटन सेट मतलब होता है आपको एक ही एलिमेंट है. जैसे हम बात किए थे कि सोफा सेट में तीनों एलिमेंट को लेके एक सेट बना रहे थे, लेकिन कोई कोई सिचुएशन है, मैथमेटिकली कोई कोई सिचुएशन है जहाँ पर ओनली वन एलिमेंट एग्जिस्ट करता है. जैसे मैं बात करूँगा इंडिया का प्रेसिडेंट, नंबर ऑफ प्रेसिडेंट है, वुमेन प्रेसिडेंट, वुमेन प्रेसिडेंट ओनली अभी तक है वन, दैट इज सी प्रतिभा सिंह पाटिल. एंड अगर बात करूँगा प्राइम मिनिस्टर है वो इंदिरा गांधी, ओनली वन वुमेन प्राइम मिनिस्टर. अगर हम बात करेंगे कि एक सेट बनाओ, लिस्ट बनाओ जहाँ पर दी वुमेन प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया, सो इसी टाइम पे ओनली एक लेडी आपको मिलेंगे. सो दिस कैटेगरी ऑफ सेट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट. दैट मीन्स वेरी क्लियरली इफ द ओनली वन एलिमेंट एग्जिस्ट विद इन दिस सेट, दिस कैटेगरी ऑफ सेट इज कॉल्ड द सिंगलटन सेट, ओनली वन एलिमेंट. और नेक्स्ट पार्ट इज वी कैन से अनदर कैटेगरी ऑफ सेट इक्वल सेट इन इक्विवेलेंट सेट. ये आइडिया, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. इक्वल सेट, इक्वल सेट मतलब होता है दो सेट, टू सेट आर सेट टू बी इक्वल इफ द दे हैव द सेम एलिमेंट. सपोज सेट ए में जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5, बी पे जो सेट है 5 3 4 2 1, दैट मीन्स यहाँ पे भी जो एलिमेंट पांच एलिमेंट है यहाँ पे पांच एलिमेंट है. सो एंड सेम एलिमेंट बात है. इक्वल सेट मतलब होता है दोनों सेट में इक्वल नंबर ऑफ सेट एंड सेम सेट, देन वी कैन से दिस सेट आर इक्वल सेट. इक्विवेलेंट सेट क्या होगा? इक्विवेलेंट सेट है इफ टू सेट हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट. सपोज ए एक सेट है जिसपे तीन एलिमेंट है, दीज आर ए ई ओ ए ई ओ, एंड बी एक सेट है जो का एलिमेंट 1 2 3, पहले में तीन एलिमेंट है, सेकंड में तीन एलिमेंट है, पहले में इंग्लिश अल्फाबेट है, दो में बी सेट में जो नंबर है. सो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट देन these two sets are called the equivalent set. So idea is we can categorize set in different angle, different points. One is finite infinite set. Another category is the singleton set, you can say null set, and another aspect is the your equal set and equivalent set. These are the different category of set. And now another category of set is called disjoint set. Disjoint set matlab unka beech pe koi commonness nahi hai, do set pe koi commonness hai. For example, jaise main bhi pehle bhi example diye the, two sets are said to be disjoint set if they do not have any common element. That means suppose A x set hai, elements are 1 2 3, B x set hai jo ka element hai 4 5 6. So wahan 1 2 3 hai, B pe 4 5 6, dono mein koi common nahi hai. These are called the disjoint set. Disjoint set ka yehi matlab hota hai, dono set ka beech mein koi bhi कॉमननेस नहीं. मैं बताऊंगा अगर डिसजॉइंट नहीं होने वाले सेट कैसे है. सपोज ए एक सेट है 1 2 3, बी एक सेट है 2 3 4, दैट मींस सेट ए में 2 3 है, सेट बी में भी 2 3 है, ये डिसजॉइंट नहीं होगा. डिसजॉइंट मतलब उस पे है, पहले पे है, सेकंड पे नहीं है. देन वी कैन से दैट मींस दे हैव नॉट कॉमन एलिमेंट कुछ नहीं है. देन वी कैन से दिस सेट आर द disjoint set. Another category of set we can say this is called subset. Subset ka ek concept alag hai. These are the, we can say these are the different types of set. One is finite infinite, another equal equivalent set. Third category pe aayega singleton set, null set. Another aspect aayega aapka disjoint set. And right now we will be discuss about subset. Subset ka मतलब क्या होता है? सेट का अंदर पे एक सेट होता है. सेट का अंदर पे एक सेट होता है मतलब ये होता है कि सबसेट एक सेट तो है लेकिन किसी सेट का अंदर पे इनसाइड पे आता है, दैट इज कॉल्ड द सबसेट. एंड राइट नाउ वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, देन आफ्टर वी विल डिस्कस इन ब्रीफली अबाउट सबसेट. एंड राइट नाउ वी विल डिस्कस सबसेट्स. सबसेट जैसे बात है, सबसेट मतलब होता है सबसेट एक सेट है लेकिन सेट इनसाइड ए सेट. We can say this is the subset. For example, अगर मैं बात करूँगा A एक सेट है जो student of the school, all student in a school, जितने सारे student है एक school का, उनका एक सेट लिए, suppose set A. Set B लूँगा मैं student of class 9 student, class 9 जो है वो student का एक सेट लूँगा. So automatically B एक सेट जो बना, B is the subset of set A, because सेट ए तो पूरा स्कूल का है, स्कूल का स्टूडेंट है. ओनली क्लास 9 स्टूडेंट को लेके मैं एक जो सेट बनाए, दैट इज सेट बी. सो वी कैन से बी इज द सबसेट ऑफ सेट ए. सबसेट ऑफ सेट ए मतलब ये होता है एक सेट इनसाइड द ए सेट, देन वी कैन से दिस इज द सबसेट. अगर मैं बात करूँ डेफिनेशन बारे में, सबसेट का डेफिनेशन क्या होता है, इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट इच एलिमेंट ऑफ सेट बी इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन बी सेट बी इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट ए. बी जो है वो सबसेट बनेगा, किसका बनेगा, सेट ए का बनेगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात किए थे क्लास 9 स्टूडेंट और टोटल स्कूल का, तो क्लास 9 स्टूडेंट जो है वो सबसेट ऑफ टोटल स्कूल का स्टूडेंट का, दैट मींस कवर करेगा, सारे एलिमेंट कवर होना चाहिए बड़ा सेट में. और एक प्रिंसिपल है सबसेट का, ईच सेट इज ए सबसेट ऑफ इट्सेल्फ. मैं बताऊंगा सेट ए सपोज है, ये सबसेट ऑफ इट्सेल्फ, सेट ए का ही सबसेट है, दूसरा को जो भी है. और नॉल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट. तीन प्रिंसिपल हमको ध्यान रखना पड़ेगा. फर्स्ट इज ईच सेट इज द सबसेट ऑफ इट्सेल्फ, सभी अपना अपने सेट का सबसेट होता है. और जो नॉल सेट होता है, नॉल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट. इफ ए एंड बी सबसेट ऑफ ए, जैसे मैं बात कहते हैं अगर ए सबसेट इक्वल टू बी एंड बी सबसेट इक्वल टू ए, देन ए इक्वल टू बी. दो सेट इक्वल हो जाएंगे जब दोनों अपने अपने का सबसेट हो जाएंगे. सपोज सेट ए इज सबसेट इक्वल सबसेट बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सेट ए, देन वी कैन से ए इक्वल टू बी. दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक पारा वी कैन से बेसिक प्रिंसिपल इन ऑफ द सबसेट. एंड अगर मैं बात करूँगा नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, सपोज एक ही एलिमेंट है, सपोज सेट ए का एक एलिमेंट है, उनका जो नंबर ऑफ सबसेट बनेगा वो दो बनेगा, क्योंकि नॉल सेट तो है, नॉल सेट सबसेट ऑफ एवरी सेट जो मैं पहले बताए थे. सो वी कैन से इफ एलिमेंट इज वन देन नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू टू. इफ एलिमेंट इज टू, सपोज एलिमेंट ए एल पी एक सेट का एलिमेंट है, नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, चार होगा. नंबर ऑफ सबसेट का जो एलिमेंट होगा वो होगा चार होगा. क्यों होगा, क्योंकि ए तो एक बनेगा, बी बनेगा, ए बी बनेगा एंड फाइव बनेगा, तो दैट इज फोर. सो तीन अगर एलिमेंट होगा उसी टाइम पे आठ एलिमेंट होगा सबसेट का. सो देयर इज ए प्रिंसिपल. जैसे मैं बात किए थे एलिमेंट एक है तो सबसेट वन होगा, और दो है तो चार होगा, तीन है तो आठ होगा. सो दैट प्रिंसिपल इज टू टू पावर एन. अगर नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो है एक सेट का, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ जो सबसेट बनेगा दैट विल बी टू टू पावर एन. अगर फोर एलिमेंट है नंबर ऑफ एलिमेंट बनेगा टू टू पावर फोर. पांच एलिमेंट है एक सेट का, नंबर ऑफ सबसेट जो बनेगा दैट विल बी टू टू पावर फाइव. अगर एन एलिमेंट है देन नंबर ऑफ सबसेट जो बनेगा दैट विल बी टू टू पावर एन. इसका प्रिंसिपल पे हमको एक ध्यान, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि पावर सेट. पावर सेट किसको बोलते हैं, जी पावर सेट होता है, सपोज पी ऑफ ए इज द पावर सेट ऑफ ए, देन सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट. दैट मीन्स पावर सेट होगा द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ दैट सेट इज कॉल्ड द पावर सेट. जैसे मैं बात किए थे वन टू एक सेट का एलिमेंट है. मैं अगेन रिपीट करता हूँ, सपोज आई कंसिडर ए कैपिटल ए इज द सेट, देन वन टू इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन पावर ऑफ ए जो होगा पावर सेट होगा पी ऑफ ए होगा वन टू फाइव. उनको लेके जो सेट बन जाएगा दैट बिकम द पावर सेट. दैट मीन्स पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट. नेक्स्ट पार्ट इज यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, इट इज ऑल्सो वन कैटेगरी ऑफ सेट, बट सबसेट कॉन्सेप्ट आने के बाद ये पता होना चाहिए, इसलिए मैं लास्टली ये पार्ट को रखा है डिस्कशन करने में. यूनिवर्सल सेट जब बात करते हैं, यूनिवर्सल सेट इज द कंटेंट्स एवरी ऑब्जेक्ट्स ऑफ पर्टिकुलर टाइप. पर्टिकुलर टाइप जैसे उनका सिंबल यू से ही सिंबलाइज होता है, यू स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सेट. सपोज यूनिवर्सल सेट डज नॉट मीन द सेट कंटेंट्स ऑल एलिमेंट ऑफ यूनिवर्स. जहाँ हम बात करते हैं यूनिवर्सल सेट मतलब नहीं है कि सारे जितने भी दुनिया में एलिमेंट है ये यूनिवर्सल है, नहीं. यूनिवर्सल सेट जो होता है कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है. यूनिवर्सल सेट फॉर वन प्रॉब्लम मे नॉट बी यूनिवर्सल सेट फॉर अनदर प्रॉब्लम. जैसे मैं एक बात करना यहाँ डिस्कशन कर लेता हूँ एक एग्जाम्पल माध्यम से. सपोज ए इज द सेट X such that X is a student of your school, and B is the set X such that X is a male student of your school, C is the set X such that X is a female student of your school, then B, C are subset of A. Here the context A is the universal set होगा and B, C उनका subset बनेगा. तो यूनिवर्सल सेट स्टूडेंट को लेके बात जो बन रहा है यूनिवर्सल सेट, उसी टाइम पे हम बात नहीं करेंगे टीचर का बात, क्योंकि यूनिवर्सल सेट जो है एक कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट ले रहे तो स्टूडेंट का बन रहे. अगर मैं बताऊंगा कि ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, आपका लेबोरेटरी लेब अटेंडेंट हो जाएंगे, आपका कंप्यूटर टीचर हो जाएंगे, ऑल जो म्यूजिक टीचर है और टीचर है जो है सारे मिलने के बाद एक ह्यूमन रिसोर्स बनेगा. मतलब ये होता है यूनिवर्सल जो सेट बोलते हैं एक कॉन्टेक्स्चुअल, एक कॉन्टेक्स्ट में ये कंसीडर होता है यूनिवर्सल सेट. नाउ वी विल बी डिस्कस अबाउट वेन डायग्राम. वेन डायग्राम तो वो तो डायग्रामिकल रिप्रेजेंटेशन है, फिर मैं बता देता हूँ वेरी शॉर्टली, क्योंकि ये चीज़ आपको किताब में ही देखना पड़ेगा वेन डायग्राम कैसे हम सेट को बनाते हैं. लेकिन डायग्रामिकली रिप्रेजेंट करेंगे एक सेट को इज नॉन एज वेन डायग्राम. इतने तो हमको पता होना चाहिए कि वेन डायग्राम का ये मतलब होता है न्यूमेरिकली अगर सेट को हम लिख रहे दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल सेट्स. और बात करेंगे वही सेट को हम डायग्राम माध्यम से अगर रिप्रेजेंट करेंगे एंड डायग्राम माध्यम से हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे और आसान होता है, बहुत प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाता है थ्रू वेन डायग्राम में. सो वेन डायग्राम इज द वन ऑफ द टेक्निक्स टू रिप्रेजेंट सेट. एंड जॉन वेन एक मैथमेटिशियन है जो इसको ये डिस्कवर किए थे. यूनिवर्सल सेट यू उसका जरूरी पड़ेगा, जहाँ पर हम वेन डायग्राम बनाएंगे वो एक यूनिवर्सल सेट का अंदर पे रहेगा और दैट यूनिवर्सल सेट शुड बी डेवलप इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल माध्यम से यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे. एंड ब्रिटिश मैथमेटिशियन जॉन वेन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ वेन डायग्राम. जैसे मैं पाल किए थे जो सेट का कॉन्सेप्ट जर्मन मैथमेटिशियन इन 1845 से जो बर्न किए थे जज कैंटर, जर्मन मैथमेटिशियन इंट्रोड्यूस किए थे द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट. सिमिलरली जो वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट सेट को रिप्रेजेंटेशन करने के, वो ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे और उनका नाम था जॉन वेन, जो ये फर्स्टली इंट्रोड्यूस किए थे वेन डायग्राम. और वेन डायग्राम माध्यम से हम बहुत सारे प्रॉब्लम जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम होता है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम और इवनली फिजिकल साइंस में जो प्रॉब्लम आता है, वो वेन डायग्राम से हम भी बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट. सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ये होता है, अगर एक सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा यू माइनस ए, दैट मीन्स यू माइनस ए मतलब होता है यूनिवर्स पे है लेकिन ए पे नहीं है, यू माइनस ए. अगर ए माइनस बी का जो सेट का कॉन्सेप्ट है ए पे है बी पे नहीं है, ये होता है. जैसे मैं बात कर रहा हूँ एक्स सच दैट एक्स, अगर हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट दैट विल बी रिटर्न ए कॉम्प्लीमेंट. ए ऊपर हम सी लिख सकते हैं, उनका मतलब होता है ए कॉम्प्लीमेंट. सपोज कैपिटल बी ऊपर सी लिख रहे हैं स्मॉल सी, देन मीन्स बी कॉम्प्लीमेंट. और बी कॉम्प्लीमेंट को हम डैश मतलब एक छोटा सा एक लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, ए टू पावर डैश बी टू पावर डैश, और ए कॉम्प्लीमेंट ए टू पावर सी बी टू पावर सी. ये कॉम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का रिप्रेजेंट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है. और हम बात करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, और ए कॉम्प्लीमेंट में पहले बताया था यू माइनस ए, यू स्टैंड फॉर होता है यूनिवर्सल सेट और ए स्टैंड फॉर होता है कि जो सेट का कॉम्प्लीमेंट हम निकालने के लिए जा रहे हैं, उनका ये मतलब होता है जो एलिमेंट यूनिवर्स में है और अपने बीच में एलिमेंट नहीं है, दिस इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट. राइट नाउ वी विल बी डिस्कस अबाउट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट. जहाँ पर बात करें डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट डिफरेंट प्रॉपर्टीज. पहला प्रॉपर्टी है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट. यूनियन होता है आपका एडिशन सेंस में यूज करते हैं. ए यूनियन ए डैश इक्वल टू यूनिवर्स. यूनिवर्सल सेट जो होता है, यूनिवर्सल सेट होता है ए यूनियन ए डैश. अगर बात करेंगे उनका इंटरसेक्शन उनका कॉमननेस होगा फाई होगा. ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू फाई. उसका बेसिस में एक लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ यूज करता है, दैट इज कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ. डी मॉर्गन्स लॉ बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, एंड उनका जो फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, एंड ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन ए डैश यूनियन बी डैश. ये दो डी मॉर्गन एक मैथमेटिशियन है, ये भी उनका नाम से ये दो लॉ डेवलप है, जिसका बेसिस में बहुत सारे प्रॉब्लम हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को बेस करके डी मॉर्गन लॉ को यूज करके बहुत सारे प्रॉब्लम सेट पे हम सॉल्व कर सकते हैं. थर्ड जो लॉ होता है दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन. डबल कॉम्प्लीमेंटेशन का ये मतलब होता है ए डैश टू द पावर डैश. अगर एक सेट का दो बार कॉम्प्लीमेंट हम करेंगे वो खुद आ जाएगा, दैट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन इज ए, खुद अपने ही दो बार कॉम्प्लीमेंट करने के बाद खुद आ जाएगा. थर्ड पार्ट है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट, एंड दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, दैट इज फाई डैश इक्वल टू यू, यू डैश इक्वल टू फाई. दैट मीन्स फाई मतलब नॉल सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट है और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा नॉल सेट है. दीज आर द फोर डिफरेंट प्रॉपर्टीज. वन इज कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, that is called a union a dash equal to universal set, and a dash intersection a complement equal to phi, and de morgan law jo hum baat kar chuke, एंड डबल कॉम्प्लीमेंशन होता है, ए कॉम्प्लीमेंट टू द पावर कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए, और लॉ ऑफ एम्प्टी और यूनिवर्सल सेट दैट इज फाई डैश इक्वल टू यू, यू डैश इक्वल टू फाई. नाउ विल बी डिस्कस अबाउट डिफरेंट ऑपरेशंस. और जहाँ पर हम बात करें डिफरेंट ऑपरेशंस, ऑपरेशन ये होता है कि जैसे हम अल्जेब्रिकल ऑपरेशन पे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होता है, सेट सेंस में तीनों डिफरेंट ऑपरेशन होता है. वन इज डिफरेंस ऑफ सेट, अनदर इज इंटरसेक्शन ऑफ द सेट, एंड थर्ड वन इज यूनियन ऑफ सेट. डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब होता है ए माइनस बी, मतलब ए पे है बी पे नहीं है. एंड इंटरसेक्शन दो सेट में बीच होता है, दोनों बीच में क्या कॉमन है. यूनियन का जो सेट होता है ए यूनियन बी होता है कि ए और एडिशन सेंस में उनको हम यूज कर रहे थे. और जहाँ पर है डिफरेंस ऑफ सेट है, डिफरेंस सेट का जो ये मतलब बनता है कि एक सेट पे दूसरा सेट पे नहीं है, दैट इज कॉल्ड ए माइनस बी. अगर बी माइनस सी बोलूँगा बी पे है सी पे नहीं है. एंड जैसे मैं बात किए थे सी माइनस डी बोलूँगा सी पे है डी पे नहीं है. ये जो थ्री ऑपरेशन है, ये जो ऑपरेशन को हम अच्छे से आप किताब में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि ये मैथमेटिकली उनको डिस्क्रिप्शन है. जो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद किताब में जाइए और जो डिफरेंट ऑपरेशन दिया है उनको अच्छे से आप पढ़ाई करिए, बहुत चीज़ आपको समझ में आ जाएगा. डियर लर्नर्स, वी बेसिकली डिस्कस सेट्स. सेट्स एक तो पहले बताए थे कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है, और डिफरेंट कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, टू डिफरेंट फॉर्म पे सेट, बिल्डर फॉर्म पे हो कि रोस्टर फॉर्म हो, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट जैसे बात किए थे इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट, सिंगलटन, नॉल सेट, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज डिफरेंट ऑपरेशन. ऑपरेशन जो यूनियन ऑफ टू सेट्स और योर इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, डिफरेंस बिटवीन टू सेट, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत चीज़ समझ में आ जाएगा. और कोई डाउट है हम अगला क्लास में भी डिस्कशन कर सकते हैं. थैंक यू.